اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. سورة آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے. اور بے شک تم میں سے ایک امت یا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, بھلائی کا حکم دے اور منکر سے روکے, اور بے شک یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں آتا ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہو تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی, تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے, یعنی تم معروف کا حکم دیتے, منکر سے روکتے, اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے, اور بعض ان میں سے ایمان والے ہیں اور بعض فاسق ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 دوسرے پارے کی پہلی آیت بھی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہیاں دو اور رسول تم پر گواہ ہو. اس میں پھر امت مسلمہ کو ایک امت بنایا گیا. اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت حکم دیا, اور وہ کیا, وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, بر اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ اور نافرمانی یعنی زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ 12, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال اللہ انی معکم. اور بے شک لیا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے اور مقرر کی ان میں 12 نقیب یعنی سردار, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شرط کیا ہے میرے ساتھ کی؟ لئن اقمتم الصلاۃ, اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر اور ان کو تقویت دو اور قرض دو اللہ کو قرض حسن, البتہ ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو ان جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. جو بھی کوئی اسے انکار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہ ساری آیات ہم سب کو ایک بنیادی مضمون کی طرف سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں, اور وہ ہے امت بن کے جینا. ہم نے ٹائم ویسٹرز میں ایک بہت بڑا ٹائم ویسٹر دیکھا تھا کہ ہر کام خود کرنے کا شوق, ہر فن مولا ہونا یا خود کو ہی سب کچھ سمجھنا, میں سب کچھ سکتی ہوں, میرے بغیر کچھ چلتا نہیں. تو آج کے ٹائم مینجمنٹ کی سیریز میں ہم بات کریں گے ٹیم ورک پر, کہ مل جل کر کام کرنا کیا ہوتا ہے, کیسے کرتے ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں, اور ان سے ہٹنے کا نقصان کیا ہے. اور میں نے جتنی بھی آیات آپ کے سامنے رکھی ان سب میں لفظ امت آپ کو ضرور اپنی طرف کھینچنے والا لفظ ہونا چاہیے, کہ آج کئی بلین مسلمان بھیڑ کیوں بن گئے, امت کیوں نہ رہے. بہت ساری وجوہات ہوں گی تو ہوں گی, لیکن ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر مل جل کر کام کرنے کا شوق نہیں رہا, چاہے وہ کوئی دین کا کام ہو, دین کا مفاد ہو یا دنیا کا ہو. ہر بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے سب کچھ کرنا چاہتا ہے, چاہے اس کو آتا ہو کہ نہ آتا ہو. جبکہ دنیا والوں کو اگر ہم دیکھیں تو دو تین مثالیں ریسنٹلی آپ لوگوں کے پاس ناروے میں بھی ہوں گی. ہم لوگ پہلے دو بینک یہاں دیکھتے تھے, ایک پوسٹ بینک تھا اور ایک غالباً ڈی این بی نور. پھر کچھ مہینے پہلے کیا ہوا, دونوں مل گئے. کیا پتہ چلا کہ ڈی این بی نور نے پوسٹ بینک کو لے لیا. اسی طرح گاڑیوں کی کئی کمپنیوں کو آپ جانتے ہوں گے, پہلے وہ الگ تھے, یہ ٹیوٹا, لینسر, کتنے نام ہیں میرے سے زیادہ شاید آپ کو پتہ ہوں گے. یہ پیچھے شروع میں الگ الگ ہوتے تھے, پھر مل گئے. دنیا والے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھی کوالٹی دینی ہے کسی کو تو مل کے کام کرو. डीएनबी नूर अपनी एफर्ट्स डाले, जो उसकी खूबी है उसमें अपने आप को एक्सीलेंसी के दर्जे पे फाइज करे, और पोस्ट बैंक जो है वो अपने लिमिटेड जो वसाइल हैं उसको बढ़ा ले। किस सोच के साथ कि कोई बात नहीं, मेरा नाम पीछे चला जाए लेकिन मेरा काम बढ़ेगा। तो जब लोगों को काम प्यारा होता है तो फिर लोग इस काम के लिए अपनी ज़ात की कुर्बानी देकर एक बड़े मकसद के लिए जीते हैं। इसके लिए उम्मत मुस्लिमा को दिन में 5 बार एक तैयारी करवाई गई जमात की नमाज से। 5 वक्त मिलके मस्जिद में नमाज पढ़ना असल में एक टीम डेवलपमेंट थी, एक उम्मत की तैयारी थी जहां हर एक दूसरे से मिलता है। नमाज का क्या है, नमाज तो इंसान ने अपने लिए पढ़नी थी। घर में पढ़ने के बजाय मस्जिद में क्यों बुलाया कि आओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि कभी कोई इमरजेंसी हो, कभी कोई दुख सुख हो तो सबको पता चल जाए कि हमने कहाँ मिलना है। फिर रोज़ मिलने वालों को देखो कि कौन क्यों नहीं आया, अल्लाह खैर करे, ये बीमार तो नहीं, इसके साथ कोई मसला तो नहीं। इसी तरह मस्जिद लोगों के लिए एक मीटिंग प्लेस बनती थी, मस्जिद जो थी वो पूरी प्लानिंग के लिए काम करती थी और वहाँ लोगों को इवन कई किस्म की शरई सजाएं और उनके मुकदमात के फ़ैसले भी सुनाए जाते थे। लेकिन जब से मुसलमान एक फ़र्द बन के जिए वो उम्मत बनना भूल गए। फितरत से कई सबक हमें मिलते हैं कि ये कायनात कैसे हमें टीम वर्क के नतीजे में खैर और ख़ूबी देती है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल शहद की मक्खियों की है। शहद अल्लाह की एक बड़ी नेमत है और इसमें शिफा है, लेकिन शहद की तैयारी एक बेहद मेहनत तलब काम है। निसफ किलो यानी आधा किलो शहद तैयार करने के लिए शहद की मक्खियों को मजमूई तौर पर 300,000 मील का सफ़र तय करना पड़ता है, 300,000 miles तय करना पड़ता है। और ये बात सामने आ गई कि एक मक्खी की उम्र चंद महीने से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए कोई एक तन्हा मक्खी 1 pound तो छोड़िए एक औंस शहद भी नहीं बना सकती। ख्वाब अपनी सारी ज़िंदगी फूलों का रस जमा करने में लगा दें, अभी रस जमा करेगी तो मर जाएगी, फिर दूसरी मक्खी शुरू करेगी तो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह सुबहान ताला ने इस नामुमकिन काम को कैसे आसान किया, इज्तमाई कोशिश से। शहद की तैयारी को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों में बांट दिया, जो कोई क्वीन मक्खी की तरह इंस्ट्रक्शंस देती हैं और कई वर्कर मक्खियां हैं, कोई अपने परों से पंखा झलती हैं ताकि शहद सूखे, कोई मक्खी अपने पेट में से वैक्स निकाल कर सील पैक करती है उसको ताकि टेट्रा पैकिंग होने लगे, और कई मक्खियां सिर्फ इर्द गिर्द के कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए एक चौकीदार मक्खी का काम करती हैं। इसकी डिटेल हम सूरह नहल में पढ़ चुके हैं, कोई सुनना चाहे तो उस तफसीर में से फिर सुन ले कि किस तरह शहद बनता है और उसके अंदर कितना ज़बरदस्त किस्म का टीम वर्क पाया जाता है। इसी तरह इसकी एक और मिसाल अगर हम देखें, आज के दौर में हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस के ज़राए मिलते हैं। चंद साल पहले अगर आप पलट के पीछे देखें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल थी। और जो लोग ग्लोब को जानते हैं, अमेरिका पूरा वेस्ट में है और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ईस्ट से भी दूसरी साइड पे जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि एक लंबा 180 का ख़त खींचे तो वो वहाँ पे आता है। अब बहुत मुश्किल था, 3 दोस्त थे, तीनों के नाम, एक का नाम डी से शुरू होता था, एक का एच से शुरू होता था और एक का एल से होता था। तीनों बैठे, उन्होंने एक प्लान तैयार किया, उस तखैल को काबिल अमल करने में पूरी कोशिश की और आज सब उस कंपनी को DHL कोरियर सर्विस के नाम से जानते हैं। शायद आज आपको पहली दफ़ा पता चला होगा कि ये DHL है क्या। ये एक टीम वर्क का नतीजा है। आज कितने पैकेज, कितनी गाड़ियाँ, कितनी सर्विसेज हमें देखती हैं। इसी तरह एक और मिसाल, 1986 में शारजा में एक वन डे मैच हुआ था, शायद आप में से किसी को याद हो, पाकिस्तान का इंडिया से मुकाबला था और इंडिया के मुकाबले में जीतने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ 4 runs चाहिए थे, 4 runs चाहिए थे और 2 गेंदें मौजूद थी कि 2 बॉल रह गई हैं, एक को कर दें क्या करें। तौसीफ अहमद का नाम सुना होगा, उस दौर का एक मारूफ क्रिकेटर था। उसने एक रन लेकर जावेद मियादाद को आखिरी बॉल पे खेलने का मौका दिया और वो छक्का जो सारी दुनिया में मशहूर हुआ कि जिसके बाद पाकिस्तान ये मैच जीत गया। ये सब क्या था? ये टीम स्पिरिट थी। छक्का एक ने लगाया, फतह सारी कौम की हुई, फतह सारी टीम की हुई। इसलिए बाज़ दफ़ा लोग दामों को जब दबा भी देते हैं ना, शख्सियत को कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहिए, तो जो हस्ती को मिटाते हैं ना उनका नाम और ऊपर आ जाता है। उनका नाम इसलिए आ जाता है कि इनको अपना नाम प्यारा नहीं था, इनको अपनी ज़ात बड़ी नहीं थी। तो इस तरह से टीम्स जो होती हैं वो कैसे बड़े काम करती हैं और अकेले इंसान कैसे करते हैं। एक मारूफ वाक़या तो आपने टीम वर्क की अफादियत में सुना ही होगा, बचपन से बड़े सुनाते आए कि एक बुज़ुर्ग था, उसके ऊपर बीमारी के असरात तारी हुए। इसने लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवाया, लकड़ियाँ मंगवाईं और बेटों से कहा कि इसकी एक एक लकड़ी को तोड़ दो। उन्होंने तोड़ दिया। फिर उसने एक और गट्ठा मंगवाया और कहा अब इन सारी लकड़ियों को जोड़ दो। गट्ठा एक बंडल बना दिया और उसमें कहा कि अब कहा इस गट्ठर को तोड़ो, तो नहीं तोड़ सके। फिर कहा कि बेटा मेरे बाद अगर तुम बिखर के लकड़ी लकड़ी बन के जियोगे, तुम कुछ काम नहीं कर सकोगे, तुम्हारे दुश्मन आएंगे और तुम्हें ख़त्म कर देंगे, लेकिन इत्तेहाद के साथ रहोगे, मिल के रहोगे तो तुम जुड़े रहोगे। ये वाक्या भी क्या बताता है कि बाज़ दफ़ा पतले धागे, आप ख़वातीन हैं, ऊन सिलाइयों का काम करती होंगी, कभी किसी ऊन की एक ऊन को तोड़ना चाहें नहीं तोड़ सकते। बाज़ दफ़ा हाथ छिल जाते हैं अगर हाथ से तोड़ें, लेकिन आप ज़रा उस ऊन के सिरे को लेके उसको खोलें और उसके अंदर जो छोटे छोटे धागे होते हैं उनको खोलें, फिर हर धागे को आप ऐसे अपने हल्के से अंगूठे की नोक से भी तोड़ लेंगी। तो इज्तमाईयत में ज़िंदगी है, उम्मत बन के जीना ही असल में इस उम्मत की कामयाबी की वजह थी। आज मुसलमान दुनिया की दौड़ में भी और दीन की दौड़ में भी जो हमें पीछे दिखते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि आज हमें इज्तमाई तौर पर मिलके कॉमन ग्राउंड पे काम करने की आदत नहीं रही। हम खुद नुमायाँ हो गए, हम खुद पसंद हो गए, हमें खुद अपना बहुत अच्छा लगता है, हम सजना चाहते हैं, हमें अपने नाम बहुत प्यारे हैं। अब इसी से ही इस एक आदत के ना होने की वजह से उम्मत बट के फ़िरकों में गई। आज क्यों लोग वहदत उम्मत की बात करने के बाद चुप कर जाते हैं? कितने बड़े बड़े सेमिनार हुए, शायद आपको कभी मौका मिला ना हो, मैंने बड़ी करीब से ऐसी चीज़ों को देखा। समटाइम सब मसलकों के फिर इमामों को, आइमा कराम को, उनके स्कॉलर्स को जमा कराया जाता है, तीन तीन दिन तक की मीटिंग्स होती हैं, आओ बैठो मिल के एक काम करते हैं, चलो सब किसी एक चीज़ पर जमाओ। आखिर में क्या होता है? वो कहते हैं हम तैयार, सब कहते हैं। आप किसी मसलक, किसी जमात, किसी गिरोह के मुसलमान के पास चले जाएं, क्या ख्याल है फ़िरका वारियत अच्छी चीज़ है? कहेंगे नहीं, मुसलमानों को एक होना चाहिए। होना चाहिए कैसे? होना चाहिए, वो कहेंगे सारे हनफी हो जाएं। वहाँ से आप उठेंगे किसी और जगह जाएंगे, वो कहेंगे हाँ सबको एक होना चाहिए, क्या सब शाफी हो जाओ। वहाँ से उठेंगे वो कहेंगे सारे हम्बली हो जाओ, वह कहेंगे सब मालकी हो जाओ, वो कहेंगे सब शिया हो जाओ, वो कहेंगे सारे सुन्नी हो जाओ, वो कहेंगे सारे वहाबी हो जाओ। और आप देखिए सब इत्तेहाद करना चाहते हैं किस नाम पे? जो उनको पसंद है। क्या सारे हनफी होंगे? नहीं होंगे। सारे शाफी होंगे? नहीं होंगे। हाँ सारे एक काम तो करेंगे ना कि इस कुरान के साथ जुड़ के पक्के सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। तो क्या कहा जाता है ऐसे मौक़ों पर? मैंने खुद ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, जब सारों की सुन सुना के मुँह पर तो कोई नहीं कहता, लेकिन वो अपने अकायद को इतना मजबूत करते हैं कि फ़िक्ही मसलों को अकीदा बना लेते हैं। यानी आप सोचिए कि एक बंदा फ़िक्ही मसला है कि आप, मिसाल देती हूँ कि मौज़ों पे मसा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं, ये कोई अकीदे की बात नहीं है, ये फ़िक्ही मसला है। लोग इसको कहते हैं जी मेरा अकीदा और है, तुम्हारा अकीदा और है। अल्लाह के बंदो, ये अकीदा नहीं होता, ये एक फ़िक का मसला है। और अगर आप इस फ़िक के मसले पे एक मसों वाले इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते और उसी कमरे में दूसरी जगह पढ़ने लग जाते हैं, तो आपको उसी नबी की वो बात नहीं याद कि जहाँ एक फ़र्ज़ जमात हो रही हो वहाँ नमाज़ अकेले में होती नहीं? इसके भी ऊपर भी थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं टीम वर्क पर, नमाज पर, कि इस्लाम ने कैसे जमात की नमाज़ को फॉर्म किया कि जहाँ सब पढ़ रहे होंगे, इवन मर्द घर से पढ़ के भी आया हुआ है, किसी सफ़र में मुसाफिर, उसने जमा कर ली फिर चला गया किसी के साथ, तो क्या करे? उठे फिर पढ़े। लोग सोचेंगे ये काफिर है क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, उसको क्या पता नहीं पढ़े, मर्दों का तो कोई मसला भी नहीं होता नमाज ना पढ़ने का। क्यों कहा कि जहाँ एक जमात हो रही हो वहाँ दोबारा ना करो? وجہ کیا ہے کہ مسلمان ایک بن کے رہیں. لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا مرنے مٹنے لگتے ہیں کہ ایک بنیادی فیکٹر کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک بہت معروف کہانی شاید آپ نے بھی کبھی سنی ہو کہ ایک عمارت تھی تو اس میں آگ لگ گئی. لوگ اپنی اپنی جانیں بچانے کی فکر میں تھے. دو معذور شخص بھی وہاں تھے, ایک لنگڑا تھا اور دوسرا نابینا تھا. انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کہ نابینے کے کندھوں پر لنگڑا سوار ہو گیا اور وہ بتاتا رہتا ادھر جاؤ ادھر جاؤ, اور لنگڑا شخص اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے دونوں نے جان بچا لی. اللہ کرے کہ آج ہمارے ملکوں میں بھی جو آگ لگی ہوئی ہے, جو آج مسلمانوں کی طبیعت ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. تو لہٰذا آج قومی مسائل ہیں, دینی مسائل ہیں, گھریلو مسائل. واللہ ہی میں تو ہمیشہ نیچے آ کے بات کرتی ہوں کہ ہم خواتین ہیں, ہمارے تو اپنے گھروں میں ٹیم ورک نہیں ہوتا. ہم تو صرف تقسیم کار اپنے گھر میں ماں بیٹی کی نہیں کر سکتے, ساس بہو کا ساتھ گزارا نہیں ہوتا. باپ بیٹا ایک دکان پہ خوش نہیں رہتے, وہ کہتے ہیں ابا جائیں تو ذرا میں کچھ کروں. ابا کہتے ہیں یہ نالائق جب سے آ کے بیٹھ گیا میرا کام ٹھپ ہو گیا. ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے, تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس میں بھی کوئی خوبی ہو سکتی ہے. جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا. اپنا بیٹا آپ کو نہیں پسند, آپ کو دوسرا دنیا کا کون سا انسان پسند ہوگا؟ اپنی بیٹی نہیں پسند ہوتی ماں کو, اپنی لاڈ اور چاؤں سے لائی ہوئی بے بہو نہیں پسند ہوتی کہ اس کو کام نہیں کرنا آتا, اس کو کھانا پکانا نہیں آتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت خودی اور انا کے خول میں لگے رہتے ہیں اور کام نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا کہ جب مسلمان اپنے آپ کو ایک امت بنائیں گے تو میں ان کو سب کچھ دے دوں گا. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ارد گرد جو آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو کون بجھائے گا؟ اس کو ہم بجھائیں گے. کیسے؟ مل جل کر کوشش کریں گے. جہاں ٹیم ورک کی ضرورت ہے وہاں ٹیم ورک کیا جائے گا, جس کا جو حق ہے اس کو حق دیا جائے گا. وہاں ایک معذور بندے نے اپنی جان دوسرے کے ساتھ مل کے بچا لی تو وہاں فائر بریگیڈ کا تو عملہ پہنچا بھی نہیں ہوا تھا. تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنے حصے کے جو ہیں وہ کر لیں اور اس سے ہم کام اپنے آگے لیں؟ اب ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی اب میں بات کروں گی کہ ٹیم ورک ہوتا کیا ہے, کیسے کرنا چاہیے اور رکاوٹ کیا ہے اس کے بیچ میں. تو پہلی بات ہے کہ ہر سوسائٹی میں تین قسم کے لوگ ضرور ہوتے ہیں, 1 2 3. پہلی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ماتحت کام کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں. وہ کیا, کوئی کہہ دے کر لیتے ہیں. بھی کیا کیوں نہیں, ہمیں کہا ہی نہیں کسی نے, کوئی بتا دیں کام ہے تو کر لیں چلے جائیں ہم, کچھ کام ہے تو بتا دیں. یعنی ایک پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ دوسروں کے انڈر رہتے ہیں, ماتوب قسم کے, بڑے عاجز, مسکین, ہمبل, نائس, بات بھی نہیں کسی سے کو فالتو کریں گے. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ دوسروں کے انڈر رہ کے کام کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھے ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں شرط کہ ان کے اوپر ایک لیڈر ہو, کیونکہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا اور ان کے اندر کوئی اپنی سوچ نہیں ہے تو پھر کوئی مخالفت کا بھی ذہن نہیں ہوتا. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حاکم بن کے رہتے ہیں, حاکمیت, ہمیشہ دوسروں کو زہر کرنا پسند کرتے ہیں. تب جائیں گے کسی جگہ پہ جب سب کام ہو چکے ہوں گے. ان کو اگر ہلکا پھلکا سا کوئی کام کرنا پڑ جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا. یہ لیڈر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیڈر سے مراد یہ لیڈر بن نہیں سکتے لیکن ذہنی طور پہ لیڈر ہوتے ہیں. اور اگر آپ ہلکا سا اس کو کہیں کہ ان کے اندر کبر بھی ہوتا ہے, جھوٹی انا ہوتی ہے, اور متکبر تو پہاڑ پہ کھڑے ایک شخص کی طرح ہوتا ہے. وہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کے اپنا قد اونچا کر رہا ہے لیکن اصل میں لوگوں کو پہاڑ پہ کھڑا ہونے کی وجہ سے اونچا دکھ رہا ہے, اور لوگ اس کو نیچے کیوں دکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ خود پہاڑ پہ کھڑا ہے. مثال دی تھی میں نے ایک دورہ قرآن کے 2010 میں تکبر والے ٹاپک میں, کہ آپ پہاڑ پہ کھڑے شخص کو امیجینیشن میں لائیں, وہ تو کہہ رہا ہے واہ میرا قد تم سب سے اونچا ہو گیا, لیکن سب کو پتہ ہے یہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے, اس کو اتارو نیچے پہاڑ سے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں, ارے تم چھوٹے تم چھوٹے, تو ظاہری بات ہے اونچائی سے دیکھیں گے تو چھوٹے. یہاں سائڈ سے تھوڑی بات ہٹی ہوئی ہوگی لیکن بات موضوع ہمارا ایک ہی ہے. کل میں نے ایک بہت ہی خوبصورت آبزرویشن کی, مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا, کیونکہ ٹاپک مجھے پتا تھا میں نے آج کرنا ہے تو خود ہی ذہن چلتا رہتا ہے. تو ہم چیزوں کو جس رنگ میں دیکھتے ہیں نا ہمیں بالکل وہ ویسی لگتی ہیں. میں کسی مسجد میں تھی تو میں انتظار میں باہر کھڑی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ پیچھے پہاڑ ہے چھوٹی سی, جیسے آپ کو پتہ ہے ناروے میں جگہ جگہ پہاڑیاں اور پہاڑیوں پہ درخت بھی ہیں. ہم جب بھی آپ راستوں میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو پہاڑوں کا ایک سیدھا سلسلہ دکھتا ہے. میں کچھ اس طرح سے کھڑی تھی جیسے آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ فلور پہ انسان کھڑا ہوتا ہے, میرے سامنے پہاڑ جو تھا اس کے اوپر درخت بھی تھے. لیکن جب میں نے غور کیا تو کیا دیکھا سبحان اللہ، اللہ کی قدرت پہ بھی پیار ہے. کچھ درخت تو زمین پہ اگے ہوئے ہیں، یعنی سڑک کے کنارے پہ، وہ کتنے لمبے ہو کے پہلے تو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے ہوئے تھے، پھر پہاڑ کی چوٹی سے اوپر ان کا قد کوئی 2-3 گز اوپر گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ امیجینیشن میں لے آئیں جو بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد پہاڑ کی چوٹی پہ پھر کچھ درخت اگے ہوئے تھے جیسے یہاں اگتے ہیں، اور وہ بمشکل 2-2.5 فٹ کے تھے. نیچے پہاڑ تھا، اوپر وہ تھے، اور وہ صرف 2.5 فٹ کا ہونے کے باوجود زمین پہ اگے ہوئے اتنے لمبے کے بالکل برابر ایک قطار بنا کے کھڑے تھے. شاید سمجھ آ چکا ہو بات. میں نے کیا دیکھا، میں نے کہا کہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ منظر لگ رہا ہے، لیکن دیکھیں کہ اس میں حکمت کیا پلی دیا ہے. یہ سب مل کے ایک یونٹی کو شو کر رہے ہیں. ہر گروہ میں زیادہ صلاحیتوں والے بھی لوگ ہوتے ہیں، جو زمین پہ کھڑے ہوئے لمبے قد، ٹائم بہت ان کو لگتا ہے، ان کے پاس 5-6 سال کا تجربہ بھی ہوتا ہے، کئی سالوں سے وہ اس کام میں لگے ہوتے ہیں، جڑوں میں پڑے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ٹیلنٹڈ، جن کے اندر ابھی اتنا وقت ان کو نہیں ملا لیکن ان کے اندر خوبیاں بہت ہیں، وہ بعد میں آ کے ملے اس کام میں، لیکن ان کا قد دونوں کے برابر ہو گیا. اصل چیز تجربہ وقت نہیں ہوتا، ایفیشنسی ہوتی ہے. آپ ایفیشنسی شو کریں گے نا تو آپ 2 سال میں 5 سال والا فاصلہ طے کریں گے. اور پھر جو خوبصورت چیز تھی وہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہر درخت ایک جگہ پہ آ کے رک گیا. یہ فطرت کا ایک عجیب سا اصول ہے. ہم یہاں گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، لائنوں کی لائنیں ہیں درختوں کی. شاید اگلے 2-4 سال میں نیچے والا بڑھ جائے، لیکن مجھے کل کھڑے کھڑے وہاں اتنا پیارا ہے اللہ پہ، مجھے ایسے لگا کہ بڑا جو ہے نا وہ رک گیا اپنا، کیونکہ میں نے اب اس چھوٹے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور چھوٹا اب خوش ہے کہ میرا قد اس بڑے کے برابر ہو گیا. اوپر سے دیکھیں تو بالکل سب کی ٹاپ برابر ہے، لیکن جب پاؤں دیکھیں تو ایک ایسے ہی ہے جیسے بچہ سٹول پہ کھڑا ہو کے باپ کے قد کے برابر ہو جائے. مجھے بہت ہی اس سے ایک نئی سوچ ملی کہ اصل میں انسان فوجی بن کے، سپاہی بن کے کسی کام کے لیے کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب ہر بندہ اپنے حصے کے کام کو اپنی اٹموسٹ کوشش پہ کرے. ٹھیک ہے، قربانی ہے، قد چھوٹے بڑے ہیں، صلاحیتوں کا فرق ہے، صحت کا فرق ہے، حالات کا فرق ہے، ٹائم ہونے نہ ہونے کا فرق ہے. امت مسلمہ میں کوئی بڑے اعلیٰ ذہن گئے، کوئی کم گئے، کوئی گاؤں میں رہتا ہے، کوئی شہر میں، کوئی بات نہیں، ضرورت سب کی ہوتی ہے. آپ کہیں بھی کوئی عمارت بنائیں، آپ کو چھوٹے کیل بھی چاہیے، بڑے بھی چاہیے، چھوٹی لکڑیاں بھی چاہیے، بڑی بھی چاہیے. کہیں چھوٹی جگہ پہ بڑی لکڑی لگا سکتے ہیں، کئی جگہ وہ بڑے لوگ آ ہی نہیں سکتے. ٹیم مینجمنٹ کی تو ایک بہترین مثال ہمارے اس جسم میں ہے. اگر آپ اپنے دل سے نکلنے والی پائپوں کو دیکھیں، شریانیں اتنی موٹی موٹی ہیں، کم سے کم اتنی تو ہوں گی یہ، جیسے اگر آپ انگوٹھے کے ساتھ اس کو کریں. اب آپ سوچیں کہ آپ کے دل سے جو سوراخ نکلی لائن، وہ اتنی موٹی پائپ ہے، اس پائپ کو آپ اپنی انگلی میں فٹ ہی نہیں کر سکتے. اب یہ پائپ کہ میں جو ہوں موجود بڑی، میں تمہارے سر پہ سوار ہوں، میں دوں گی خون سب جگہ، تمہیں کیا کرنا آتا ہے؟ تم پتلی پتلی وریدیں اور شریانیں تو انگلیوں میں کیسے جائے گی؟ فطرت نے اس کو ایسے برینچائز کیا. آپ کھول کے برونکائی کہتے ہیں، پھپھڑوں میں سے جو مین ہمارے پائپ نکلتی ہے نا، اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں، برونکس، برونکائی، کئی مختلف قسم کی چیزیں، وہ پورے پھپھڑوں کے ارد گرد یوں جال بنتی ہیں جیسے آپ نیٹ بنتے ہیں کریشیے سے، اور وہ پورے کھول دیتی ہیں. پورا جسم ہمیں اس چیز کی بات بتاتا ہے. تو لہٰذا جو دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کام ہمیشہ دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں. تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فلیکسیبل ہوتے ہیں، کام کرنا پڑے کر بھی لیتے ہیں، کرانا پڑے تو کروا بھی لیتے ہیں. اونچ نیچ ہر ملک میں ایسی ہے. ہمارے ملک میں اگر ہم اپنے ملکوں کے مسائل کو دیکھیں، پہلی قسم کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. وجہ کیا ہے کہ 200 سال کی انگریز کی غلامی، آج بھی ہم لوگ ذہنی طور پہ غلام ہیں. ٹھیک ہے، علم اتنا کوئی نہیں، تعلیم کم تھی، ورثے میں غلامی ملی، ذہنی غلامی ہوئی، مزاجن اتنے ماتحت ہو گئے کہ ہر وقت باہر سے ڈکٹیشنز مانگتے ہیں، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ پہلی قسم سے بہت کم ہیں. ہمارے ملک میں لیڈرز نہیں ہیں. ملک سے مراد پورے مزاج کو لیں. اسی چیز کو آپ دینی مزاج میں لائیں گے تو ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں آگے جا کے، لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں نا، وہ ہمارے پاس کم ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ پوری سکلز نہیں ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کی پناہ کہ وہ اپنا جوتا بھی سیدھا کرنا ہوتا ہے تو پہلے بیل کر کے چپڑاسی کو بلاتے ہیں اور پھر ان سے یہ کام کراتے ہیں، جس کو افسرانہ قسم کا آپ ذہن کہہ سکتے ہیں. اصل ضرورت جس کی آج مسلمانوں کو ایک امت ہونے کے ناطے، ان پاکستانیوں کو ایک پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے وہ تیسری قسم کے لوگوں کی ہے کہ جو کام کرنا پڑے تو کر لیں، نہ کرنا پڑے تو نہ کریں۔ میں نے کئی کامیاب لوگوں کو اس طرح قریب سے دیکھا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے، کوئی اپنے فیملی سوشل میں ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں آفس میں سر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، باس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے وقت میں دیکھا ورکر نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب بالکل وہ کام کریں جو ان کے 100-200 والا ورکر کرتا ہے۔ کبھی شرم نہیں ہوتی میری نظر میں، ہمیشہ ایسی بات کرتے ہوئے میرے والد کا نقشہ آتا ہے۔ ہم نے ان کو بہت کام کرتے دیکھا، ساری زندگی جو ہارڈ ورک کہہ سکتے ہیں نا، ہم نے ان کا دیکھا ہے۔ جو بھی کام انہوں نے کیا، اگر پولٹری فارم تھا تو راتوں کو جب کوئی ورکر نہیں جاتا تھا، آدھی رات کے وقت، سردیاں پاکستان کی، وہ اس وقت اسکوٹر میں جاتے تھے کہ نہیں میں نے جا کے کرنا ہے کام، اور وہاں جا کے آپ کو ہے وہ کہتے تھے نوکر نے تو کہہ دینا، ہم نے نہیں آنا، مالکوں نے تو نہیں کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دین بھی ہوتی ہے، اور اس کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں چونکہ آپ کو اس وقت ایک ریلیجیس ورک شاپ دے رہی ہوں، اگر میں واقعی آپ کو ایک سوشل ایشوز یا قومی مسائل پہ بات کرنے والی بات کرتی تو شاید میں آپ کو اپنے ملک کی ترقی کے کئی یہاں نسخے دے سکتی، لیکن ہمارا چونکہ ٹاپک قرآن، اس کا پھیلانا اس سے ریلیونٹ ہے، تو بات صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہم دین کو بھی کیسے پھیلا سکتے ہیں، ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے، کیونکہ ورنہ ہمارا ٹاپک بہت کھل جائے گا۔ ضرورت تو بہت ہے، لیکن آپ سن بھی جائیں گی، ہو سکتا ہے آپ کو سوچ مل جائے، اور بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ ٹپس میں آپ کو دیتی ہی رہوں، لیکن بہرحال اگر ہم اس ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ مل گئے، پھر ہم سارے دین کا کام کرنے والے اس ٹیم ورک کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جب دین دار جڑیں گے نا تو دنیا دار بھی جڑیں گے۔ اور لکھ لیں، لوگوں کو جوڑنے میں جتنا دین داروں کا اختلاط ہوتا ہے اتنا بے دینوں کا نہیں ہوتا، اور اپوزٹ بھی ہے۔ امت کو توڑنے میں جتنا دینداروں کا ہاتھ ہے اتنا فاسقوں اور فاجروں کا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اس کے لیے ٹیم بنانی پڑتی ہے۔ کیسے بنے، ٹیم ورک ہوتا کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تو لکھ لیجئے ٹیم ورک کی، ٹیم اور ٹیم ورک کی تعریف، سپرد کیے گئے کام کو مکمل کرنے کا نام ٹیم ہے اور ٹیم ورک ہے۔ سپورٹ کرنا کیا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو کام اسائن کیا گیا، اسائن ٹاسک یا ورک کو فلفل کرنا، سپورٹ کیا گیا کام پورا کرنے کا نام ٹیم ورک ہے۔ ٹیم میں لوگ دوسرے پر ڈپینڈ بہت کرتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ گاڑی ہے نا، گاڑی ٹیم ورک سے چلتی ہے، کوئی انجن ہے تو کوئی گیئر ہے تو کوئی کلچ ہے تو کوئی ویلز ہیں۔ کلچ کام کرنا چھوڑ دے، وہ 7-8 فٹ کی گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا تار کا دماغ خراب ہو جائے، وہ کام کرنا چھوڑ دے تو گاڑی وہاں پہ رک جائے گی۔ اپنے خود کام کرنے میں رسک کم ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا سنگل، بس ایک جوڑ ادھر لگایا ہوا ایک ادھر لگایا ہوا، چلو جی موٹر چل رہی ہے۔ لیکن جب آپ کوئی کمپیوٹرائز چیز لے آتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جوڑ کہاں سے کہاں لگا ہے۔ تو ٹیم ورک کی اہمیت جتنی ہے اتنا یہ سینسٹیو بھی ہے۔ ٹیم کے لوگ ایک دوسرے پر انحصار بہت کرتے ہیں، جو کام اکیلا بندہ نہیں کر سکتا اس کو ٹیم کی صورت میں کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کا حصہ برابر ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا کام کرے یا بڑا۔ یہ جملے لکھیں، اور آپ سب نے اس کے اوپر ایک ایسا ہینڈ آؤٹ تیار کرنا ہے جو آپ کی ہینڈ بک بن جائے، یعنی آپ سب نے اگلی کلاس میں ٹیم ورک، ٹیم، ٹیم سے ریلیونٹ جو باتیں آپ سمجھے ہیں نا، اس کو خوبصورت قسم کے ہینڈ آؤٹ میں اپنے ہاتھوں سے بے شک لکھ کے لائیں یا جیسے بھی لکھیں، اس کو لا کے دکھانا ہے۔ اور یقین کریں، آج اگر اس موضوع پہ ہم نے بات سمجھ لینا تو آپ کہہ لیں کہ ہم نے اپنے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ اکیلے جو کام نہیں ہو سکتا اس کو دوسروں کے ساتھ مل کے کرنا ہے۔ پھر ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا، اس میں فائدہ سب کا مشترک ہوتا ہے اور نقصان بھی مشترک ہوتا ہے۔ ٹیم کا کوئی بندہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ لوگوں کو دکھتے ہیں، کچھ نہیں دکھتے۔ کچھ کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے واہ کیا آنریبل جاب ہے، اور کچھ کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی رشک نہیں کر سکتا، بلکہ وہ چھپتے ہیں۔ مثال دیتی ہوں بلڈنگ کی، جس گھر میں، جس بلڈنگ میں اس وقت ہم موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، باہر روڈ سے آپ دیکھیں تو آپ کو کیا دکھے گا، آپ کو اس طرف کا فرنٹ اور اوپر کھڑکیاں دکھیں گی، ایسی ہے نا۔ लेकिन क्या हम में से किसी को इस बिल्डिंग की बुनियादें दिख रही हैं? है ही नहीं, दिखी नहीं, हम में से कोई के है ही नहीं। मेरा ख्याल है इधर है ही कोई नहीं बुनियाद। अब अगर बुनियाद अपनी जगह से हिले कि क्या हो गया, इतने सालों से मेरे ऊपर इतना बोझ लादा हुआ, आज तक मेरा तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। बुनियादें कभी नहीं बदलती, याद रखिए। हत्ता कि अल्लाह का घर है दुनिया में, उसकी भी बुनियादें नहीं बदली गई। अल्लाह ताला ने खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों से बनवाया था, फिर आदम अलैहिस्सलाम से, फिर हज़रत शीस से। शीस के बाद तूफ़ान नूह जब आया था तो उसमें खाना काबा का ऊपर का हिस्सा ख़त्म हो गया था, पानी में बह गया। फिर कुछ अरसा तक खाना काबा का ज़ाहरी वजूद दुनिया में नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम और इस्माइल को चुना। वाइज़ यरफ़ो इब्राहिम उल कवाइद मिन अल बैत। यरफ़ो का लफ्ज़ बताता है कि उन्हीं बुनियादों पर उठाया। और अलपढ़ के देखे अलविदा नहाया में बड़ा दिलचस्प वाक़या मिलता है कि जब तारीख पता था कि बनाऊँ कहाँ, अल्लाह ने कैसे उन बुनियादों की खबर की। फिर नबी सल्लम के दौर से पहले भी एक वक्त ऐसा आया कि इसकी ऊपर की बिल्डिंग जो थी ये सैलाबों में बह गई। फिर उस वक्त भी इसके लिए अल्लाह ताला ने आसमान से एक बादल भेजा। वो बादल घूमता घामता बिल्कुल एक ख़ास जगह पर आ गया। फिर उसके नीचे जब खुदाई की गई तो वहाँ से बुनियादें मिली। बुनियादें कभी नहीं मिटती। दुआ करें अल्लाह हमें दीन की बुनियादों में डालें। और इस दौर में 19 और 20th सेंचुरी, जिस वक्त 2011-10 हमारे चल रहे हैं, इस वक्त जो दीन का काम करेगा ये दोबारा बुनियादों का काम पड़ेगा। हो सकता है हम में से कोई दीन की बहार ना देखे, हम में से कोई सूद को ख़त्म होता ना देखे, हम में से कोई मुसलमानों को वर्ल्ड लीडर बनता, सुपर पावर्स बनता ना देखे, लेकिन अगर हमारा, मैं कहती हूँ, सिर्फ चूँच में पड़ा हुआ पानी जितना हिस्सा डल गया ना इस काम में, और हम इस दुनिया से आफियत से गुजर गए, तो मैं कहूँगी अल्लाह तू जान तेरा दीन जाने, मैं अपना हिस्सा डाल के चली। जैसे हज़रत इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए चिड़िया ने चूँच में पानी भर के फेंका तो दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे एक चूँच भर पानी से भला ये आग बुझेगी? तो कहती मुझे क्या, मैं तो कल कह दूँगी अल्लाह को कि अल्लाह चूँच ही इतनी थी। हाँ, सूरत अलराफ़ में हमने असहाबे सब्त के बारे में पढ़ चुका, उन्होंने क्या कहा था, माँ सीरत नीला रबी, हमारे रब की तरफ उजर पेश कर देंगे कि हमने इनको रोका था कि ये ना करो धोखेबाजी, नहीं रुके ना रुके। तो असल बात यह है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करके इसकी कोशिश को लेना है। कुछ इंटों ने कुर्बानी दी, बुनियादों में गई, कुछ माथे पर सज गई, क्या बड़ी बात है। माथे वाली तो कई दफ़ा बदली जाएंगी, खिड़कियाँ तो हर 5-6 साल में बदली जाएंगी, छतें फिर नहीं कर दी जाएंगी। कभी भी ग्लैमरस और पंप एंड शो वाले काम को सिर्फ काम ना समझें, वो बड़ा ख़तरे का होता है। मसलन आप देखिए, इस वक्त अगर अल्लाह ताला हम सबको फितनों से महफूज रखे, लेकिन अगर आप देखें तो टीचर की चेयर दूसरों से ऊंची होती है ना। मैं ऊपर बैठी हूँ, बैठी तो हम सब बराबर हैं, लेकिन मैं ऊंची कुर्सी पर हूँ, आप लोग नीचे हैं थोड़े। खुदा ना खासा सामने से कोई गोली चले, कोई आए और एकदम शूटिंग करे, सबसे ख़तरा किसको है? मुझे ख़तरा है, आप तो इंशाल्लाह बच जाएंगे, नीचे जाएंगे। आप जितने ऊपर होते जाते हैं उतनी चोटें पड़ती हैं। कहीं कोई बदनाम होता है, कहीं किसी पे नाम आता है, किसका नाम आता है? लीडर्स का नाम आता है। दीन का काम हो, लोग मौलवी को गाली देते हैं, उलमाए कराम को बुरा भला कहते हैं। तो लिहाजा आप जितना नुमाया होते जाएंगे उतना ख़तरों में जाएंगे। नुमाया होने के लिए शर्त क्या है कि आपके अंदर उतना ही वज़न हो। शख्सियत के अंदर जब इंसान के स्ट्रांगनेस होती है तो फ़ायदा होता है। इसमें हम अलग बात करेंगे इंशाल्लाह कि एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी क्या होती है। आप कभी भी हल्के हल्के वज़न के साथ दुनिया में हलचल नहीं मचा सकते। फिर अगली बात नोट कीजिए टीम वर्क या टीम के सिलसिले में, कि टीम में एक दूसरे की कमज़ोरियाँ छुप जाती हैं। जैसे गिरती ईंट को बचाने के लिए साथ ही दूसरी ईंट सहारा दे देती है। अकेला बंदा कोई काम करेगा ना, उसकी कमज़ोरी बहुत जल्दी हाईलाइट होगी, लेकिन टीम में कईयों को पता ही नहीं कि अंदर कितनी खराबियां हैं। डाइनिंग टेबल के सजने और पेंट्री के खाने और किचन के अंदर की हालत में बहुत फ़र्क होता है। ये हकीकत है, ये एक फैक्ट भी है। असल बात है कि बहुत बड़ी ख़राबी नहीं होनी चाहिए। और हमेशा अपने लोगों को डांटें उनके सामने, और अकेले में दूसरों के सामने उनकी तारीफ़ करें। अच्छी माएँ क्या होती हैं, अकेले में बच्चों को डांटती हैं और दूसरों के सामने उनका अच्छा मामला, यानी एक बैलेंस मामला होना चाहिए। तो टीम में एक फ़ायदा क्या होता है कि एक दूसरे की खामियां छुप जाती हैं। फिर टीम वर्क टीम में एक और चीज़ है, और वो क्या है कि राजदारी का बहुत सीरियस किस्म का निज़ाम कायम रखने की ज़रूरत होती है। जितनी टीम बड़ी होती जाती है ना, उतना राज फाश होने का खतरा होता है। फिर एक और टीम वर्क या टीम से रेलेवेंट बात कि टीम जितनी छोटी होती है ना, ये बड़ा बहुत ही कीमती बात है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो उम्मीद है कि ज़िंदगी भर इंशाल्लाह इस चीज़ मिसाल को सामने रखेंगे। टीम जितनी छोटी होती है ना, उसको बाहर से ख़तरे ज़्यादा होते हैं, लोग परेशान होते हैं उनके उभरने पे। ये क्या हो रहा है, ये चार लोग बैठ गए। मैंने सीरत का मदनी दौर शुरू करवाया हुआ, एक क्लास में मुझे वो मिसाल याद आ गई कि असद बिन ज़ुरारा मदीना में आ गए हैं, क्या हो गया इनको, क्या हो रहा है, ये साद बिन माज मुसलमान हो गए हैं, यो सहत मुसलमान हो गए। छोटी टीम को बाहर से ख़तरा होता है, लेकिन जितनी टीम बड़ी होती जाती है, उसको अंदर से ख़तरे लाहक हो जाते हैं। आपस में फूट पड़ जाती है, आपस में रस्साकशी शुरू हो जाती है, ओहदों की जंग, सदारत की बात, कुर्सियों की बात, मेरा ओहदा मेरी ओहदा। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा है जिसको रोटी नहीं पकानी आती। अब देखें कि रोटी जब आप गोल करके झाड़ते हैं, उसको छोटी सी रोटी होती है ना, तो क्या होता है, आप रोटी बहुत सिक्योर होती है। जितनी आप रोटी बड़ी करते जाते हैं, पतली करते जाएँ, फुलका एप्पल करते जाएँ, क्या होगा, अंदर से जुड़ेगा। ये आपका मेरा जो हाथ झाड़ने का रोटी का अंदाज़ है ना, कुछ लोग हथेलियों से रोटी झाड़ते हैं, कुछ उंगलियों से झाड़ते हैं, रोटी हमेशा इनसे उंगलियों से। मेरा तजुर्बा गलत भी हो सकता है, जो लोग अंदर जोर ज़्यादा देते हैं ना, उनकी रोटी ज़ाहिर है कि अंदर से टूट पतली होगी, और आप झाड़ते जाएँ झाड़ते जाएँ, ना पकाएँ, ऐसी खेलने जाके आज करें ये एक्टिविटी। जितनी रोटी आप बड़ी करते हैं ना, उस हमेशा रोटी अंदर से टूटेगी, इल्ला ये कि कहीं कोई चीज़ मोटी फंस गई, कुछ हो गया हाथ, जहाँ हाथ जोर का पड़ गया वहाँ से पतली हो जाएगी। रोटी की शक्ल बनाते जाएं, जितनी टीम बड़ी होगी ना, अंदर से टूटेगी। तो इसके लिए ज़रूरत किस बात की होती है, वही बात कि देखा जाए कि हाथ किधर रखना है। अच्छा रोटी पकाने वाला कौन होता है, कि जो पहचानता है कि कहाँ मोटी करने की ज़रूरत है, कहाँ पतली, और वो क्या है, हर एक को उसका हक दो, उसकी जगह पे रखो। जैसे आप देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए पानी मांगा था, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा, सूरत बकरा की आयत 60 है, इज़ तस्क़ा मूसा अली कौमी ही फ़कुल नद्रिब बियसा कल हजर फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा कि पत्थर पर असा को मारो, बस उसमें से 12 चश्मे फूटे, कद अलीमा कुल्लुना से मशरबा हूँ। ये लफ्ज़ नोट कर लें, कद अलीमा कुल्लुना से मशरबा हूँ, हर बंदे ने अपने पीने की जगह को पहचान लिया। ये है कामयाब टीम का एक नुस्खा, कि हर बंदे को खूब अच्छी तरह पता हो कि मैंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या तरीक़ाकार होगा। तो लिहाजा टीम के अंदर इस बात की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए कि टीम बनाते हुए, आप एक माँ है ना, तो आप अपने बच्चों की भी एक टीम बना सकती हैं, पूरा घर भी एक टीम हो सकता है। शौहर का एक मुकाम है, बीवी का एक है, बच्चों का और है, बहुओं का और है, हर एक को उसकी जगह देते जाएं, इंशाल्लाह ताला सब कुछ अपनी जगह पे रहेगा। इसके बाद आप देखिए कि फैसले, जब हम डिसीजंस लेते हैं ना, तो उसमें टीम के हर बंदे का उतना हिस्सा होना चाहिए जितना कि उसका मुकाम है। इसको फिर मिसाल दूंगी घर से, शौहर बीवी हैं और बच्चे भी हैं, ये सारा घर मिलके एक टीम है, लेकिन क्या हर मशवरा बच्चों के सामने किया जाता है, और हर बात में बच्चों की मर्ज़ी मांगी जाती है? नहीं। और बस अक्लमंद शौहर होते हैं, वो बीवियों को कभी भी अपनी असल पे नहीं बताते, उनको पता है, बीवियों को नहीं बताते कि हमारे पास असल में कितना है, वरना बीवियों ने ब्लैकमेल करना है जब उनको कोई सोने का सेट पसंद आएगा। इसी तरह ये इस अमल पे बीवियाँ तो बहुत ही अमल करती हैं, वो तो शौहरों को नहीं बताती हैं। इसी तरह आप देखिए कि जब कोई भी काम हो, एंड पे प्रोडक्ट जिसको आप कह लें अपनी ज़ुबान में, तो उसमें पूरी टीम का नाम रखना चाहिए कि जी ये हम सब की मुश्तरका कोशिश है, माशाल्लाह ये हमारा घर है, ये हमारा कौम है, ये हमारा इदारा है, ये हमारी है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हर बंदे को उस चीज़ में अपना हिस्सा महसूस होता है और वो उसको रखते हैं। फिर इस तरह आप देखिए कि बाज़ दफ़ा टीम वर्क जब होती है ना, तो कुछ लोग नाराज़ ज़रूर होते हैं, और वो कौन होते हैं, जो अफसर नुमा होते हैं। भाई आमिर बनना, अलिफ वाला आइन वाला नहीं, आमिर यानी डिक्टेटर बनना तो बहुत अच्छा है, करो ये करो, पूछो नहीं, क्यों पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो। एक है आपने जो कह दिया कर दिया, कोई पूछ नहीं सकता। उसके बाद अब दूसरी तरफ आ गया कि मशवरा या किसी का फैसला या किसी की बात, तो जो ज़रा हाकिमाना सोच रखते हैं ना, उनको लगता है कि हमारी तो कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही। नतीजा क्या होता है कि बस दफ़ा कुछ लोग फिर साइकोलॉजिकली मरीज बन जाते हैं और खौफ का शिकार होते हैं। बाज़ लोगों के एक और भी खौफ होता है, और वो क्या कि हमारी की तरह एक दूसरा ना नुमाया हो जाए। जिस काम पे हम जो लगे हैं, हमारी तो जी जारादारी है, मैं तो इतने साल से ये काम कर रही हूँ, अब कोई और कैसे आ जाए। किसी कारामत काम पे कभी इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे जिस्म ने इसकी एक मिसाल हमें समझाई, और वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। आप में से जिसको साइंस से थोड़ी सी दिलचस्पी है उनको मज़ा आएगा इस बात से, हमारे जिस्म में ब्लड हर वक्त बनता रहता है, फिर वो ब्लड जिस्म में घूमता है, फिर बीमारियां जिस्म की खून में दाखिल होती हैं, ये एनर्जी का सो, यानी ब्लड ऐसे ही हमारे जिस्म में जैसे हमारे किचन में ड्रेनेज है, जो भी आप मतलब समझें कि पंपिंग होती है जिस्म में। अब होता क्या कि हमारा पुराना खून जो होता है ना, जो गंदा होता है, फितरत ने ऐसा खूबसूरत निज़ाम किया हुआ है कि वो किसी न किसी तरीके से जिस्म से निकल जाता है। औरतों का तो पीरियड्स की सूरत में हर माह निकलता है, इसीलिए औरतों का जिस्म नरम होता है। मर्दों का निकलता नहीं, उनका वही जिस्म में कुछ और केमिकल एनालिसिस से गुजर के जिस्म में सख्ती, बालों, हड्डियों के, जिस मर्दों के जिस्म अमूमन सख्त होते हैं, उसकी वजह यह कि उनका वो खून जिस्म में, जिसको आप कह लें कि दोबारा उसी को साफ़ करके आप डाल देते, फ़िल्टर होकर डल जाता है। जब तक जिस्म को नया खून नहीं देंगे ना, आपका जिस्म हेल्दी नहीं होगा। आपने मैं कभी सुनी ये बात कि फलां बीमार था, फिर उसके जिस्म से सारा खून निकाल के नया खून डाला गया? हर टीम को नए खून की ज़रूरत होती है। आप अगर पिछले 20 साल से अपना घर चला रही हैं ना आसान तरीके से, अब लाइए नया खून। बेटियों को मौका दें, बहुओं को मौका दें। ख़राब करेंगी ना, एक वक्त आएगा ठीक करेंगी। एक मौका आएगा कि जिसके साथ वो अपने आप को दूसरी तरफ ले जाएंगी, तो इंशाल्लाह। मुश्किल बहुत होता है, यहाँ एक और चीज़ लिख लें कि टीम के अंदर किसी दूसरे को एडजस्ट करवाना, पज़ल्स, छोटे छोटे पज़ल मिलके एक चीज़ बनती है ना, इस तरह हमारी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों को मिलके बनी हुई है। आप कुरान की तरफ अब आई हैं, हालांकि इससे पहले आपकी ज़िंदगी पूरी मुकम्मल थी, पज़ल लगे हुए थे, ये बच्चों का टाइम है, ये वक्त है, अब इसमें आपने एक छोटा टुकड़ा कुरान के इस कोर्स का लगाना है, तो एडजस्टमेंट तो मुश्किल होती है। इसी तरह नए आने वालों को वेलकम कहना चाहिए। एक ख़राबी टीम वर्क के रास्ते में जो बहुत रुकावट बनती है लोगों के लिए, वो क्या है कि हर नए आने वाले को टिकने नहीं देते। ये जुमला सुना हुआ है, टिकने, लेकिन बहुत ही लोग अमूमन बोलते हैं ना जी फलां तो किसी को टिकने ही नहीं देता, लेग पुलिंग, ये बहुत ही ज़्यादा नासमझी की बात होती है। कभी वो काम जो आप कर रहे थे कोई दूसरा करने आ जाए, तो आप सोचा करें कि ये मेरे पास एक सदका जारिया कमाने का मौका आ गया, अब मैं इसको वो सारी टिप्स बताऊँगी जो मैंने पिछले 10 साल में काम करके सीखी हैं, आपका सदका जारिया बनेगा। बात कहते हैं अच्छा देखते हैं अब करते हैं, बजाय इसके कि कॉम्पिटिटर बने, कंट्रीब्यूटर बने, कंट्रीब्यूट करें, अपना हिस्सा डाल दें, सिखाइए। बेहतरीन तरीका क्या होता है किसी को भी टीम बनाने का, आप पहले उसको गलत काम करने दें, छोटे छोटे स्लॉट्स में तजुर्बा कराएं। रोटी है ना, को बेटा पकाओ मैं खाऊंगी, और मैंने देखा जिस प्यार से बाप अपनी बेटियों की टूटी हुई रोटियां खाते हैं ना, अल्लाह अकबर, खाते भी उससे तारीफ भी करते हैं, और यकीन करें फिर इससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप देखिए अक्सर बेटियों की बापों से बहुत बनती है, माँ से क्यों नहीं बनती, टीम वर्क ना होने की वजह से। माँ ना चाहते हुए, माने के ना माने, सच्ची बात है कुछ हकीकतें माननी बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा माएँ खुद अपनी बेटियों को अपनी कॉम्पिटिटर सोचने लग जाती हैं। करने दें गलत, एक दफ़ा कर दें, फिर जब वो गलती होगी ना फिर बताएं। हम बाज़ दफ़ा कर अगले की सरासर हिमायत रहे होते हैं, लेकिन अगला हमें अपना दुश्मन समझता है, उसमें भी कमी है हमारे अंदर कि हमें एक टीम डेवलप करनी नहीं आती। तो बहरहाल हर बंदा अपने हालात के मुताबिक चीज़ों को ले जाता है और काम करता है। फिर इस तरह आप एक और चीज़ इस बारे में नोट कर लीजिए, और वो क्या है कि टीम वर्क के लिए वसत नज़री की बहुत ज़रूरत होती है। ब्रॉड माइंडेड होना, ऑप्टमिस्टिक हो, रोशन ख्याल हो, बड़ी बात सोचे, रिस्क लेने के लिए तैयार हो। घुटन जहाँ होगी ना और सख्त कंट्रोल होगा, वहाँ टीम नहीं बनती। बाज़ बहुएँ सिर्फ इसलिए सासों से अलग हो जाती हैं कि घर का माहौल बड़ा घुटन वाला है। बाज़ घर सिर्फ इसलिए टूटते हैं शौहर बीवी के कि सास और बहू के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। तो ज़रूरत के खुलापन, आओ ब्रॉड माइंडेड, देखिए कि हम अपने आप को ठीक कर लें ना, वही बात के तस्वीर ठीक कर लो तो दुनिया का नक्शा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अपने आप को इस तरह से खोल के रखिए कि असल चीज़ काम पे रहे, शख्सियत पे ना रहे। फिर इसी तरह एक और चीज़, और वो क्या है कि जहाँ टीम वर्क होता है ना, वहाँ रिसोर्सेज आप कह लीजिए, ज़राए टीम वर्क में आप कह लें कि ख़र्चा कम होता है और काम ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज मैक्सिमम यूज़ होते हैं। बस आप देखिए, घर के 10 लोग हैं, 10 लोग 4 जगह खाना पकाएं तो उसका ख़र्चा लिख लें, और 10 का खाना एक जगह पक जाए तो ख़र्चा शायद आधे से भी कम होगा। रिसोर्सेज थोड़े, लोग ज़्यादा। और इस्लाम का एक अजीब मिजाज रहा है हर दौर में, और ख़ास तौर पर आप नबी सल्लम के मामले को देख लीजिए, क्या थे रिसोर्सेज? कुछ भी तो नहीं। एक अबू बकर था और अल्लाह के नबी सल्लम ने काम शुरू कर लिया। मक्का से मदीना गए थे तो कितने को थे रिसोर्सेज? कभी भी ज़्यादा नहीं हुए इस्लाम के पास। याद कहते हैं आपके जी हमारे पास एटॉमिक एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, वो कभी भी नहीं हुई। हाँ, वमा रमई तज रमई तवला किन्न अल्लाह रमा, वो तो एक मुट्ठी भर पत्थरों में भी अल्लाह ताला बुलेट वाली ताकत डाल देता है। तो लिहाजा इस किस्म के काम जो होते हैं वो इंसान की अफादियत को बढ़ा देते हैं। फिर आप देखिए कि आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि टीम की ज़रूरत कब पड़ती है। मसलन आप में से हर एक अपने हालात के मुताबिक मेरी बातें सुन रहा होगा, तो आप सोचिए कि क्या मुझे टीम की ज़रूरत है कि नहीं। बस को पता ही नहीं होता, सच्ची जो बात है, क्योंकि हमने ना ये बातें कभी सुनी ना पढ़ी। हम सोचते हैं तो बड़ी बड़ी बातें, हालांकि ये घर के छोटे छोटे इश्यूज़ को भी हल करती हैं। यदि मैं आपको अब कुछ सपोज चीज़ें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाती हूँ कि टीम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। नंबर एक, अफराद खाना या घर के लोग या इदारे के लोग, स्कूल के लोग, बैंक के लोग, जहाँ भी आप रहते हैं, वो लोग आपस में खिंचे खिंचे रहते हैं। नंबर एक, ये इस बात का सिम्टम है कि आपको टीम की ज़रूरत है, टीम वर्क या टीम बनने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जहाँ अखराजात पूरे ना हो रहे हों, खर्चे करो ना रो रहे हैं, खर्चा पूरा नहीं होता। कोई इदारा चला रहे हैं तो आप कहते हैं फंड ही नहीं पूरे होते हैं, मुल्क चला रहे हैं तो आप कहते हैं हमारे मुल्क में पैसे ही कोई नहीं, तो हम इनकी सड़कें कहाँ से बनाएं? तो आप फिर फील करें कि आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। कैसे? मतलब ये आखिरी मिसाल को आप एक मुल्क के फंड्स की कमी की बात करते हैं, तो आप चेक करें कि क्या टेलीफोन की पाइपें बिछाने वाले और बिजली की पाइपें बिछाने वाले दो डिफरेंट टाइम पे सड़कें खोते हैं? तो आप फौरन समझ जाएंगे नहीं। इन दोनों को बुलाओ, एक टीम बनाओ, और बापडा को भी बुलाओ और सुई गैस वालों को बनाओ, और उन्हें कहो कि देखो इस इलाके में पीपल्स कॉलोनी में सड़क डालनी है पाइपें, एक वक्त में डालो। क्यों? कि इससे सड़क एक दफ़ा बन के दोबारा खोदने का जो वक्त है वो पैसा बचे और हमारी मालियत कम हो जाए। ठीक है, इसी तरह कभी आपने गौर किया, मुझे तो बहुत ही हैरत होती है और आपको भी शायद कभी होती होगी, कि आखिर वजह क्या हमारे दीनदारों के खर्चे पूरे क्यों नहीं होते? अंदर बैठ के देख लें, वजह यही है, टीम वर्क नहीं है। हम रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, हमारे खराजात ज़्यादा होते हैं, हमारी प्लानिंग बहुत थोड़ी होती हैं। ऐसी जहनों में बातें आती रहती हैं ना लोगों से सुन सुना के। तो किसी की बात जहन में थी और मैंने कहीं एक बड़ा इमोशनल जुमला पढ़ा किसी के कर्ज के बारे में, कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम बैंक से कर्ज़ा ले लें और सूद पे कर्ज़ा ले लें। मैंने बहुत बैठ के सोचा, मैंने कहा आखिर अल्लाह तो वही है जो बदर में भी था, अल्लाह तो वही है जो उहद में भी है, और अल्लाह तो वही है जो हर दौर में मुसलमानों की मदद करता है, वजह क्या? फिर वो जब बंदा सोचता है ना तो उसको वजूहात समझ आती हैं। तो मेरे दिल में आया कि अगर हम थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज़ पे गौर कर लें, मिसाल अपनी लें, छोड़ें दूसरों को, वल्लाही आप सब तो इस वक्त जो आपकी क्लास है इनको तो मैं इस इदारे की होस्ट क्लास कहती हूँ, कि जो भी जितने भी आते जाएंगे, लेकिन जो पहली सबीलुल जन्ना का मुकाम है इंशाल्लाह वो तो बन गया आपका, क्योंकि आप तो बुनियादों में पड़ गए। पॉलिसीज़ कितनी मैटर करती हैं, हम अपने टीम वर्क के सिलसिले से कैसे अखराजात कम कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को देख सकते हैं आप, हम इसकी मुंह बोलती कई मिसालें दे सकते हैं आप लोगों को। मैंने कहा फुला इतना जो कह रहे हैं, 3 माह के लिए मैनेजमेंट दे दें किसी ऐसे बंदे को जिसको काम करना आता है या उसको जगह का इस्तेमाल करना आता है, मेरा ख्याल है कि कई मिलियंस का कर्ज़ा जो है वो दूर हो सकता है। तब्दीली हमेशा मुस्तकिल अमल से आती है, क्योंकि जो बीज लगाएंगे उसको काटना भी है। मैंने क्या करना है इतनी रौनकों मेलों को, मेरे सामने 200 लोग आ गए, व्हाट नेक्स्ट, कल मैं चली गई दुनिया से, मैंने उन्होंने मुझे क्या दिया। टीम वर्क के नतीजे में आप देखिए कि ये काम होते हैं, इससे रिसोर्सेज कम होते हैं। इसलिए टीम वर्क के लिए इंसान के पास एक प्लान भी होना चाहिए, ये भी एक नोट कीजिए। टीम बन जाए करना क्या ये नहीं पता, प्लान बहुत ज़रूरी है। जब प्लान नहीं होते ना तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी टीम झड़ जाती है। अच्छा, टीम की अमूमन दो किस्में होती हैं, एक रस्मी टीम बनती है, एक गैर रस्मी बनती है। गैर रस्मी जो होती है ना, वो हम जहाँ चार लोग बैठे टीम बन गए, भाई चलो आज ऐसा करते हैं कि सारे मिलके विंडोज साफ करते हैं, यहाँ बैठ के आप बैठे बैठे डिसाइड, एक बंदा आपसे कराता है चलो तुम ये शीशे करो मैं वो करूँ, 25-30 लोग मिलें सारे शीशे साफ हो जाएंगे। ये गैर रस्मी टीमें होती हैं, इसमें स्पिरिट हो तो काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन जो रस्मी टीमें होती हैं उनके अंदर फिर प्लानिंग बहुत, कई सालों की इलेक्शन होते हैं, उसको इलेक्ट करना है, ये इस मरहले से उतरा, उससे उतरा, उसके अंदर गया और उनसे ये काम करना होता है। टीम के लोगों में अमूमन क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहली जिसको मैं कहती हूँ द वन द मोस्ट वन, मकसद देखो। ये चीज़ तो आप अपनी जो एक्टिविटी होगी ना उसमें बहुत बड़ी करके लिखिएगा, हमेशा लोगों को मकसद साथ जोड़ता है। आप कहेंगे मकसद क्या होता है भाई, हाँ भाई हम सब दीन का काम कर रहे हैं। मिसाल है क्या आप देखें कि हर मस्जिद हर मदरसा हर इस्लाम का काम करने वाला, मसलन जैसे कुछ लोग दावा वर्क कर रहे हैं, कुछ न्यू मुस्लिम्स को कन्वर्ट करवाने में मदद दे रहे हैं, कुछ औरतों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये सब छोड़ के एक जगह आ जाए, नहीं। मकसद जो दीन के नाम पे लोगों को जोड़ेगा ना, हिया कलिमतुल्लाहिल उलिया, सूरह तौबा में भी आता है, सूरह सफ में भी इसका मफहूम आता है, सूरह अनफाल में भी, कई जगह ये खुलासा है कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। मैं बच्चों को पढ़ा के अल्लाह का कलमा बुलंद कर लूँगी तो मैं वो करूँगी इंशाल्लाह, आप बड़ों को पढ़ा के अल्लाह के कलमे को बुलंद कर दें तो हम दोनों एक ही टीम हैं, हम एक लेवल पे आके मिल जाएंगे। आप कहते हैं कि मुझे नोश खाती है, मैं नोश लोगों को इस्लाम का पैगाम दे के अल्लाह के कलमे को बुलंद करूँगी तो इंशाल्लाह हम सब मुख्तलिफ नामों से रहें, हमारा नाम नूरुल कुरान हो, आपका नाम नूरुल हुदा हो, आपका नाम जो है वो कोई बरकत हो, कोई रहमत हो, कुछ आप एक ही होंगे इंशाल्लाह। ये तो प्लेटफॉर्म होते हैं, पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस क्या एक बन सकती हैं, इज़ इट पॉसिबल? अल्लाह तो खुद कहते हैं कि हमने तुमको छोटे छोटे ग्रोहों में बांट दिया ताकि तुम काम करो। मकसद देखो, अब दीन का काम करते हुए मकसद फिर फ़र्क कैसे होते हैं? मकसद फ़र्क कब होते हैं, जब अल्लाह के नाम की बुलंदी से ज़्यादा अपना नाम बुलंद हो जाए, अपना ज़ाती मुफाद प्यारा हो जाए। बस बस सरासर मुफाद पैसे का होता है काम पैसे के लिए, लेकिन ये शुक्र है एक रिलीजियस जॉब मिल गई है हमें, फ़र्क इतना ही है, वहाँ से भी पे मिलनी थी यहाँ से भी मिलती है, बस अच्छा शुक्र है साथ जॉब भी मिल गई, साथ नमाज भी पढ़ा रहे हैं, साथ दर्स भी दे रहे हैं, साथ लोगों को जमा भी करके दर्स कर लेते हैं। ये चीज़ जब होगी ना कि मुझे करना है ये काम पैसे के लिए, पैसे से मुराद पैसा मकसद ना हो, यानी मकसद कभी कभी उसमें पैसा बन जाता है रास्ते में। दूसरी एक चीज़ जो बाज़ दफ़ा अल्लाह के कलमे से बुलंदी से ज़्यादा अपना ओहदा बन जाता है, मेरा क्या इधर मुकाम है, मुझे क्या यहाँ प्रोटोकॉल मिलेगा। अब ज़ाहिर वो काम दीन 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 है, लेकिन असल में वो आपका अपना ओहदा है, ओहदा है, ओहदा है। फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा इस तरह के बहुत सारे लूप होल्स आ जाते हैं दीन का काम करने वालों में। अगर हम सब चाहते हैं ना कि ये जगह आबाद रहे, तो नसीहत समझ लें, वसीयत समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लें, जब कभी कोई फ़ैसला करें उसमें अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की बात देखें। खैर एक को नहीं समझ आ रही होती बात उस वक्त, फिर ट्रस्ट भी करना पड़ता है। ये भी जहन में रखिए कि जब भी कोई टीम बनेगी ना उसका एक लीडर ज़रूर होगा। नबी सल्लम ने फरमाया कि सफ़र करो, तुम में से दो लोग सफ़र कभी ना करें, अकेला बंदा जंगलों में रातों को तन्हाई में सफ़र ना करे। इसलिए कभी मुझे पता चले ना आप में से कोई रात को लेट घर जाए या आए या कहीं जॉब से, तो मुझे बहुत हड़का होता है, नहीं करना चाहिए, शरण जायज़ भी नहीं। शैतान है पास इंसान के, कोई चोर चुकार आ सकता है, कुछ भी, दो भी ना करें, क्योंकि एक के दिल में शैतान आ गया उसको मार के उसके पैसे ले जाएगा, शैतान कोई नफ्स की बुराई करवा ले उससे, कम से कम तीन लोग, क्योंकि उस दौर में रातों के सफ़र थे, जंगलों में भी जाते थे, इससे मुराद आप समझ लें। तीन लोग हों। आपने फरमाया कि जब भी कुछ लोग मिलकर सफ़र करें तो फिर उसमें से एक को अपना इमाम बनाओ, लीडर। वो कैसे? वो डिसाइड करेगा कि कहाँ रुकना है, कब खाना खाना है, स्टॉप ओवर कितने होंगे, रात को ट्रैवल करना है कि दिन को। आज उम्मत इतने छोटे छोटे मसलों में पड़ी रहती है, इस मसले पे नहीं पड़ती कि अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर जो लीडर कह दे उसको मानो। एक सफ़र था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा गिरोह भेजा और उसमें एक शख्स को कहा कि तुम इनके अब अमीर हो। इसको अमीर लश्कर कहते हैं या अमीर कारवां कह ले। और लोगों से कहा कि देखो तुम सब अब इसकी मानना। रास्ते में गए, उन्होंने लोगों से कहा कि यहाँ रुको, रुक गए, कहा दरख्तों से लकड़ियाँ तोड़ के लाओ। चले गए, ले आए, कोई बात नहीं, क्योंकि लीडर है, इमाम है, मात तो माननी पड़ती है। कहा इसमें आग लगाओ, आग भी लगा दी, सबने करा। कहा इसमें कूद पड़ो, कहा ये कैसे करें, इस आग से बचने के लिए तो ईमान लेके आए हैं, तो आग में जाना है तो हम तो नहीं कूदेंगे। कहा तुम्हें नहीं पता अल्लाह के नबी की बात कि तुम्हें कहा था कि मेरी हर बात मानना, काम तो नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे और कुछ करा ले। खैर, मामला रफा दफा हुआ, वापस आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये केस खुला। आपने फरमाया कि पहली दो बातें ठीक थी तुम्हारी, लेकिन अगर तुम उसके कहने पे आग में कूद जाते तो क़यामत तक तुम आग में रहते। क्या पता चला इस वाक़े से कि इन्नमत्तात फिल मारूफ, गुना और सवाब, ये नहीं कि मेरी अकल ये कहती है, तो लीडर लाजमी होता है फितरत के सूल में। शायद की मक्खी में लीडर आपको मिलेगा, मच्छर मक्खी में लीडर मिलेगा, क्योंकि जब कोई काम कराने वाला नहीं होता तो दूसरों को काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बहरहाल वापस आ जाते हैं हम अपने पहले मकसद पे। मकसद एक हो, जब मुसलमान टूटते हैं या दो जमातों में बदलते हैं, तफरकेबाजी होती है, मकासद का फ़र्क होता है। हम सब रोड पे चलते हैं ना, आप देखते हैं हम सब एक ही वे पे चल रहे होते हैं, गाड़ियाँ कोई 60 में, कोई 70 की स्पीड पे। सब लोग एक वक्त पे आके अलग अलग क्यों हो जाते हैं, कभी सोचा आपने? आगे जब तक एक रोड पे चलना मकसद था, रहे जो ही हमारे मकासद बदले, मेरा मकसद मेरा घर था, आपका मकसद हॉस्पिटल था, आपका मकसद स्कूल था, फ़ौरन देखिए रोड से गाड़ियाँ उतरती जाती हैं। बैठ के सोचा करें तो लोग कब टूटते हैं। नंबर एक, मकसद एक होता है, टूटने वाली बात यहाँ नहीं कर रही लेकिन इशारतन बात आ गई है तो लिख लें। टीम टूटती कब है? जब गलत फहमियाँ हो जाती हैं, जब हकूक और मुफादात की जंग लग जाती है, रस्साकशी हो जाती है। और टीम को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह शैतान की चाल होती है। शैतान को ये अच्छी तरह पता है कि जब मुसलमान एक मकसद पर जुड़ते हैं तो मैं उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, तो अकेले को तोड़ना चाहता है, वो तोड़ के करता है। हदीस में आता है कि अकेली भेड़ को भेड़िया खा जाता है, इसलिए कहा जमात के साथ रहो। ये हमने भी एक जो जमात के साथ वाली हदीस अपनी पसंद से कई जगह मोड़ ली हुई है ना, उसमें भी असल में टीम वर्क था। कहा अकेली भेड़ को भेड़िया खा जाता है, शैतान किसी को पहले अलग करता है फिर खाता है, बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी है वो। और मैं शैतान की चालें एक जगह पढ़ा रही थी तो मैंने सोचा जितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग शैतान करता है उतनी तो हम भी नहीं करते, उसी से सीख ले। पैदा होते ही बच्चे के पास आके बैठ जाता है और मौत तक साथ लगा रहता है उसके। तो बहरहाल मकसद एक होगा। दूसरी चीज़, अज़्म और जज्बा, मोटिवेशन, ये मैंने करना है, ये काम मेरे बगैर हो नहीं सकता। शौक कह लें आप इसको, आप इसको इंसान की अपने अंदर की जिसको अर्ज कह लें। देखिए, एक लफ्ज़ होता है जॉब और एक लफ्ज़ होता है मिशन। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाज़ दफ़ा आपको अपने मिशन की तकमील पे भी पैसे मिल सकते हैं, इंसान है ना, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। आपको पैसे किसी गवर्नमेंट से मिल सकते हैं, किसी इदारे से मिल सकते हैं, किसी इंसान से मिल सकते हैं। क्योंकि अगर सारे दीनदार बेचारे जो मस्जिदों में फुल टाइम काम कर रहे हैं, अगर उनको खाना पीना ही ना मिलेगा तो वो बेचारे लोगों से मांगेंगे। लेकिन याद रखिए कि मिशन और जॉब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मिशन में बंदा थकता नहीं है, उसको वक्त के पूरा होने का एहसास वहाँ से उठा नहीं देता। मिशन जो होता है ना, ये अज़्म और जज्बों के साथ आता है। ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है, ये मेरा काम है, मैंने करना है। हर बंदा टीम का जब तक ये ना सोचे, टीम नहीं चलती। अल्लाह ताला अपने नबी को कहता है, हर दिल मुमिनीन अलल क़िताल, सूरह तौबा या अनफाल है, चेक कर लीजिएगा बाद में। रग़बत दिलाइए मोमिनों को किताल पर। غزوہ احد بدر میں جب صف بندی کی، سب کو ان کی جگہوں پہ فائز کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عریش پہ چلے گئے، ایسی جگہ تھی جہاں سے سب دکھ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر اس وقت بھی ایک پرسنل سیکرٹری یا مشورے دینے کے لیے یا لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے میں موجود تھے، اور اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوگوں کو رغبت دلا رہے تھے. جب دیکھا ذرا سے سست ہونے لگے لوگ تو آپ نے وہاں سے جوش والی بات کی. حدیث میں آتا ہے کہ غیر مستحق لوگوں کو نہ دیا کرو علم، ضائع ہو جائے گا علم. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی وہ لے لیں کہ جو آپ کو کندن بنائے، تو آپ کو اس کورس میں ایک ایک چیز کو ماننا پڑے گا، وقت سے لے کے، ہوم ورک سے لے کے اور باقی ساری چیزیں لیئر لیس نکالیں گے تو آگے کام کریں گے. جو لوگ عزم اور جذبہ رکھتے ہیں نا، اب یہ آپ کا پھر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مجھے کیسے پتہ چلے میرے اندر عزم ہے یا جذبہ ہے کہ نہیں، پھر اس کی بھی لکھ لیں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ آنے کے بعد آؤٹ نہیں ہو جاتے، آ تو گئے ہیں ذرا ہم کچھ اور کام نہ کر لیں، صرف رول کال نہیں لگاتے، سائن ان سائن آؤٹ کے شوقین نہیں ہوتے. پھر یہ لوگ اس کام پہ آ کر خود ہی کام میں لگ جاتے ہیں جو ان کا کام ہوتا ہے. پھر اسی طرح عزم اور حوصلے کا مطلب یہ کہ ایسے بندوں کو خواب میں بھی اپنے اس کام کے خواب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جب تک کوئی چیز تمہارے خوابوں کا حصہ نہ بنے نا، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا مشن نہیں بنا، وہ ہم اور غم نہیں بنا ابھی تک. پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت رسمی کاروائیوں کے حریص نہیں ہوتے کہ پہلے بیٹھیں، کوئی ہمیں ڈکٹیشن دے، کوئی میٹنگز ہے، یہ ہے وہ ہے، بلکہ یہ کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں. پھر عزم اور جذبہ جس میں ہوتا ہے، آپ اس کو اسی طرح سمجھ لیں، ہاں کہ ذرا آپ کہہ تو دیں، آپ کے شوہر آپ کو کہہ دے کہ بیگم کل چلیں گے شاپنگ کرنے، جیولر پہ لے جاتا ہوں، پھر دیکھیں ذرا اگلے دن صبح میاں کو یاد دلانا پڑتا ہے، آپ کہیں گے ہاں میں تو بھول ہی گئی، رات کو ہی نہیں نیند آتی، خوابوں میں ہی سیٹ پہن پہن کے دیکھیں گے کہ کیا سجرا ہے میرے اوپر. ہیں تو جذبہ اور عزم دکھتا ہے، چال سے دکھتا ہے. بہرحال اب عزم اور حوصلوں کو آپ خود دیکھتے جائیں. تیسری چیز، باہمی رابطہ اور افہام و تفہیم کی صلاحیت، کوآرڈینیشن، اور آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کر لیتے ہیں کہ کسی کی کوئی مجبوری ہے تو اس کو فوراً میک اپ کر کے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. رابطہ بہت ضروری ہے. اگر رابطہ نہ ہو، نمبر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں رہتے کہاں ہیں، غم کیا ہے، دکھ کیا ہے، کس مسئلے میں رہتے ہیں، تو پھر ہم عموماً لوگوں کو صحیح کام نہیں دے پاتے، یا کام کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کی مجبوریاں نہیں سن سمجھتے. تو ایک خاص حد تک کسی بھی ٹیم میں لوگوں کے ساتھ رابطے ہونے بہت ضروری ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے جب چلائیں گے تو بات پھر آپ کے گروپس تک آئے گی، تو اس کے لیے بھی سمجھیں کہ پھر گروپ کے جو دو لوگ ہیں یا تین لوگ ہیں یا پورا گروپ ہے، کسی نہ کسی حد تک ان کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے، جتنی اجازت دی جائے. یہ نہیں کہ آپ گروپ لیڈر سے فون لے کے ہر وقت ان کو تنگ کیا جائے، یا ایک دوسرے سے ہی کہا جائے اچھا جی تم ہی میرے حصے کی رول کال بھی لگا دینا اور تم ہی مجھے ہوم ورک بتا دو. یعنی آسان طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اچھا، جب میں نے لفظ بولا نا ہم و تفہیم، تو اس میں ساتھ ہی مجھے خرابی بھی دکھ گئی، اور وہ کیا کہ بعض دفعہ ٹیم ممبرس کا آپس میں اس قسم کا رابطہ ہو جاتا ہے، وہ خود ہی اٹ سٹ کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بھئی آپ کہاں سے آ گئیں، آپ تو آج نہیں تھی. نہیں، انہوں نے مجھے فون کر دیا تھا کہ تم چلی جانا، میں آج نہیں جا رہی. بھئی آپ کیا، آپ کا یہ کام تھا، آپ کو بتاتے. بھئی وہ آپ کیوں نہیں ہے، وہ میں نے فلاں کو بتا دیا تھا. افہام و تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مجبوری سمجھیں تھوڑا بہت. جیسے آپ دیکھیں، میں نے سنا ہے کہ لوگ نرسنگ کرتے ہیں، چلو بھئی تمہیں آج تم بیمار لگتی ہے، تم بیٹھ جاؤ، میں کر لیتی ہوں، یہ میں بھاری کام میں کر لیتی ہوں. بعض بچوں کے اسکولوں میں کام کرتے ہیں، چلے آپ سے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ آ گئی ہیں، ہم آپ کو چاہے اس طرح کی تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طرح کی ہو کہ ایک چھوٹا سا جملہ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو سسٹم کو خراب کرے گی وہ نہیں کرنی. دو کا ایسا رابطہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہ جی ہو گیا ہو گیا، آپ فکر نہ کریں. کیوں نہ فکر کریں، جہاں جس کی ذمہ داری ہے نام تو اسی کا لگنا ہوتا ہے. پھر چوتھی خوبی جو ایک ٹیم میں ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ہر چیز کے پس منظر میں دیکھنے کی صلاحیت ہو. پس منظر کہتے ہیں، پس کہتے ہیں پیچھے کو، اور منظر کہتے ہیں سین، یعنی بیہائنڈ دا سین دیکھنے کی صلاحیت ہو. ہمیشہ ہر چیز جو سامنے ہمیں دکھتی ہے نا، اصل میں ویسی نہیں ہوتی. تو ہمیشہ جو چیز سامنے دکھتی ہے نا، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، بیک پہ دیکھیے. اور اس کو کسی حد تک وزڈم اور حکمت بھی کہتے ہیں، اور یہ آتی ہے اللہ کے خوف سے. और जो लोग खामोश रहते हैं ना वो छुपे भी रहते हैं, और जो फौरन बोल देते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा देखिए कि इज्तमाई फ़ायदे की खातिर इनफरादी कुर्बानियों की बहरहाल ज़रूरत होती है। बार दफ़ा कह दिया जाता है कोई ऐसा काम जो अकल में नहीं आ रहा, तो सब्र कर ले, पी जाए कि ज़रूर कोई हिकमत ही होगी, तो हमें यह कहा गया इस काम में बेहतरी होगी तो ये कहा है, तो अड़ी नहीं करनी चाहिए, बैक में देखने की ज़रूरत होती है। कछुआ और खरगोश के दोनों में से एक ने दूसरे से रेस्ता फैसला किया, और उस वक़्त जो पहली दौड़ में कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया, क्योंकि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चल के वहाँ पहुँच गया जहाँ पे खरगोश तेज़ दौड़ के भी ना पहुँच सका, क्योंकि मंजिल से पहले ही थोड़ी दूर वो सो गया। फिर उसके बाद खरगोश को ख्याल आया, तो फिर उसने उसको कहा एक बार फिर जीत दें, तो उसने उस मामले को इस तरह से लिया कि अब पूरा सफ़र तय करके ही फिर सोऊंगा, जब पहुंच गया तो बस कहानी ख़त्म हो गई। अब आज हम इसको थोड़ा सा एक मज़ीद नए एंगल से देखते हैं। शुरू में वही कहानी है इसको कि दोनों ने एक रेस की, और रेस के शुरू में खरगोश तेज़ चला लेकिन कछुआ सिर्फ रींग रहा था। खरगोश तेज़ चलते चलते एक जगह बैठा और थक गया कि चलो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, मुझे तो पता ही है मैं तो भाग के भी अपना वक्त पूरा कर लूँगा। तो उसने वहाँ अपने आप को आराम में रखा, लेकिन कछुआ आगे चला गया। अब आप देखिए कि कछुआ आगे निकल गया, खरगोश पीछे रह गया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये बचपन से मुहावरा सुनते हैं कि जो मुस्तकिल चलता रहे और चाहे वो स्लो ही हो वो जीत जाता है, इसके बरक्स जो फास्ट हो लेकिन बीच में रुक जाए वो हार जाता है। लेकिन ये ओल्ड वर्जन है। अब क्या हुआ, एक नया तरीका हम इसको देखेंगे कि इस जीत का क्या है। इसके बाद खरगोश था, उसने सोचा कि ये क्यों हो गया, मैं क्यों हार गया, वजह सोची। फिर उसको समझ आई कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और केयरलेस हो गया था, रिलैक्स, यानी ये खामखा एतमाद था कि मुझे आता है ये काम करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा उसने अपनी खामी को देखा। यहाँ हम सब के लिए अमल की बात क्या है कि जब भी कभी किसी चीज़ को ना कर पाएं तो सोचें कि मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या वजह थी। अमूमन हम ऐसे वक्त में दूसरों को देते हैं, मसलन कहीं जाते जाते हमारी ठोकर से एक बॉस गिर गया, बजाय इसके कि ये कहें कि मैं देख के नहीं चली, क्या कहते हैं एक ग्लास तुमने यहाँ रखा क्यों था, हाथ लग के टूट गया, और कुछ ना कहें तो मैं कहती तुमने मेरी मत मारी हुई ना इसलिए मेरे से ये टूट गया। हाँ, तो दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपना कसूर ढूंढते हैं। फिर इसके बाद इसने कहा कि चलो ठीक है, यानी इफ़ ही हैड नॉट टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड देयर इज नो वे द टॉर्टॉइस कुड हैव बीट हिम। ये कहता है कि जो मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, अगर वाकई मैं इसको सही लेता, ऐसे ही एक अपने लिए ले ना लेता, तो कभी भी जो कछुआ था वो मुझसे जीतता ना। तो इसने कछुए से कहा कि आओ एक बार फिर मुकाबला करते हैं, कछुआ मान गया। अब क्या हुआ कि खरगोश जो था वो तेज़ भागा, बगैर रुके वो अपनी जगह पे पहुंच गया, जीत गया, जबकि कछुआ बहुत अभी पीछे था, कछुआ हार गया। अब क्या हुआ, इससे हमने क्या सीखा कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। दो तरह के लोग होते हैं काम करने वाले, चूँकि हम टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि मेरे काम करने की रफ्तार क्या होती है, तेज़ चलती हूँ क्या आहिस्ता चलती हूँ, या तेज़ चल के आधा बीच में छोड़ के बस फिर फ़ोन पे लग जाती हूँ, सोने लग जाती हूँ, खाने लगती हूँ। तो असल चीज़ क्या चाहिए, फास्ट भी काम करें और कंसिस्टेंट भी हो। जो लोग स्लो काम करते हैं ना, लोग एक वक्त आते हैं उनसे फिर जान छुड़ाते हैं। गाड़ियाँ चलाते वक्त आप रोड में देखिए, जो गाड़ी आहिस्ता चलती है ना, बिल आखिर सब लोग उससे आगे निकल जाते हैं, कौन उसके पीछे रेंगे। तो ज़िंदगी में अगर हम स्लो काम करेंगे, बात आहिस्ता करें, लोग आपके बस ठीक है मैं समझ गई, आप ऐसे ऐसे चलेंगे लोग आपके पीछे नहीं आपके आगे चलेंगे, तो आप हमेशा फॉलोअर्स ही रहेंगे अगर आप स्लो चलेंगे। लीडर बनने के लिए फास्ट चलना पड़ता है। अब यही हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, एक बहुत स्लो है और रिलायबल भी है, दूसरा तेज़ भी है रिलायबल भी है, तो कौन सा जीतेगा इंशाल्लाह उस काम में, जो तेज़ भी हो रिलायबल भी हो कंसिस्टेंट भी हो, काम करे भी अच्छा जल्दी भी करे और मुस्तकिल मिजाज भी हो। आप कितना ही अच्छा काम करें, आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो कोई नहीं आपको रखेगा। आपके एक बहुत अच्छी रिसेप्शनिस्ट हैं, वेरी गुड, वेरी पंक्चुअल, बहुत कुछ सब कुछ, लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान में रहती हैं तो हमें क्या लगे उससे, हम नॉर्वे में रहते हैं। अवेलेबिलिटी इज़ शर्त, आप पहले फर्स्ट थिंग आपकी अवेलेबिलिटी है, आपकी सारी स्किल्स लोग बाद में देखेंगे। इसलिए हमेशा इंसान को क्या होना चाहिए कि इट्स गुड टू बी स्लो एंड स्टडी बट इट्स बेटर टू बी फास्ट एंड रिलायबल। तेज काम करें और अच्छा करें, स्लो ना करें। अभी भी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। अब कछुए ने कहा, अच्छा मैं क्यों हार गया, ये जीत गया, मैं हार गया, अब मैं क्या करूं? इसने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं एक और रेस का मुकाबला करता हूँ। इसने खरगोश से कहा कि तुम एक और मेरे साथ रेस करो, लेकिन अब इस दफ़ा हम डिफरेंट तरफ चलेंगे। खरगोश ने कहा ठीक है, मान गया। अब जब सफ़र शुरू किया तो अब देखिए कि इस कछुए ने एक अकलमंदी की कि इस दफ़ा जो रूट ढूंढा उसके बीच में पानी आता था, जैसे दरिया कह लें, कोई नदी नाला है। कछुआ पानी में तैर सकता है, खरगोश जो है वो नहीं तैर सकता। जूं ही पानी की जगह सामने आई, खरगोश खड़ा है। इतने में पीछे से कछुआ जो है वो तेज आता चलता चलता आ गया। अब उसने आके तो वो पानी जो था उसको क्रॉस किया, वो जीत गया, ये हार गया। अब कौन जीता? कछुआ जीत गया, खरगोश पीछा हुआ। अब इसमें फिर हमें समझ आती है, इसमें से एक अमल की बात है कि पहले ये देखिए कि आपने आपके अंदर खूबी क्या है। रास्ता शुरू करने से पहले जहाँ भी आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वहाँ से देखिए कि रास्ते में कोई दरिया तो नहीं आता है। तो फिर जब कभी ऐसे कोई मामलात हो तो उसको शुरू में टैकल करें। बाज दफ़ा हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक अच्छी बात करता है तो उसको ये देख लेना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं, जो मैनेजमेंट में हैं, वो किस तरह के हैं। यानी मकसद सारी बात का ये है कि कोई सफ़र शुरू करने से पहले देखिए कि पहुंचना कहाँ है। और अकलमंद तो वो होता है जो मंजिल को देखकर कदम उठाता है। यही है मुत्तकी। वौलाएका हुमुल मुफ्लिहून कौन होते हैं? कि वो आखरत को सामने रख कर घर से निकलते हैं। अब फिर एक और मौका आता है, इससे ये भी पता चलता है ना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये ना कहें कि नहीं जी हम नहीं जीत सकते। अब कछुआ और जो खरगोश थे वो दोनों ने सोचा कि हम ऐसे करते हैं कि हम दोस्त बन जाते हैं। क्यों हम एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, तुम आगे मैं आगे, मुकाबलेबाजी है, तुम जो करोगे मैंने भी वही करना है, आता हो करना ना आता हो करना है, जो मैं नहीं कर सकता मैं करूँगा, आओ हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा चले अब हम एक आखिरी रेस और खेलते हैं। पहली तो कंपटीटर बन के की थी ना, तो अब हम फ्रेंड्स बन के करते हैं। अब वही रास्ता था, जूँ ही दरिया रास्ते में आया तो खरगोश और कछुआ पीछे का जो सफ़र था उसने कहा, देखो खरगोश से कि तुम तेज़ चलते हो ना, तो मैं तुम्हारे कंधों पर सवार हो जाता हूँ। जब दरिया से पहले का सफ़र था उसमें कछुआ खरगोश के कंधों पर बैठा। अब आगे आ गया दरिया तो क्या हुआ, कछुए ने खरगोश को उठा लिया। ये है टीम वर्क। जहाँ मेरी कमी है मैं आपकी मदद ले लूँ, जहाँ आप में कमी है आप मुझे मौका दे दें खिदमत का। तो ये है मॉरल कि जब एक स्लो और एक फास्ट बंदा मिलके कोई काम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करने के बाद दोनों जीतते हैं। यही है, इसको कहते हैं विन विन गेम। तुम भी जीतो हम भी जीते हैं। ज़िंदगी में इसका मज़ा उठा के देखें। हम कहते हैं तुम जीते हो तो मैं हारी, तुम हारे तो मैं जीती। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि ब्रिलियंट बनिए। और ये मकसद जब सामने होता है तो कमियां बेशियां पूरी करते कराते एक इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे लेता है। हस्बैंड वाइफ को देख ले, एक स्ट्रांग हो सकता है, पर्सनैलिटी में एक लो होता है, तो क्या ये कहते रहे मेरा हस्बैंड आता ही कुछ नहीं, करता ही कुछ नहीं? नहीं, आप उसकी कमज़ोरी को छुपाइए। इसी तरह बाज़ बीवियाँ जो होती हैं उनमें कमी हो सकती है। तो असल बात यह है कि टीम वर्क जो है वो ज़िंदगी का हुस्न है। लेकिन क्या वजह है कि टीम बन नहीं पाती? मोटे मोटी बात दोहरा लेते हैं इसको एंड करते हुए कि तीन अमूमी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग टीम वर्क नहीं कर पाते। पहली वजह है स्किल्स की कमी। स्किल्स कोई नहीं है, जो काम एक बंदे को दिया जाना था वो कर नहीं पा रहा। दूसरी वजह होती है ट्रेनिंग की कमी। स्किल्स बहुत है माशाल्लाह, खूबियाँ अल्लाह ने बहुत दी हुई हैं, लेकिन कोई ट्रेन करने वाला नहीं। तीसरी वजह होती है साइकोलॉजिकल कमियाँ, नफ्सियाती कमज़ोरियाँ या साइकोलॉजिकली वीकनेसेस कुछ ऐसी होती हैं। फिर मिजाज का फ़र्क होता है, मूड का फ़र्क होता है, बाज़ दफ़ा ख्यालात एक जैसे होते हैं लेकिन आदतों का फ़र्क होता है। फिर बाज़ लोग जो होते हैं वो सीखना नहीं चाहते, बाज़ लोग दूसरों को मौका नहीं देना चाहते। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से टीम्स जो होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी टीम की स्पिरिट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? आपको लग रहा है कि आपकी टीम शुरू में अच्छी थी अब ढीली होती जा रही है, या उसके अंदर काम करने का मोटिवेशन कम होता जा रहा है, या उनके अंदर जोश कम हो गया, तो उनको क्या करना चाहिए? नंबर एक, हम लिखिए, वही हम, मैं की बजाय हम का लफ्ज़ उनको याद दिला दें। احساس دلائیے کہ یہ ہمارا کام ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے میرا یہ کام تمہارا یہ کام، بلکہ ہمارا کام ہے. ان کو سکھائیے کہ یہ کام آپ کا اپنا کام ہے. پھر دوسری چیز، احساس ذمہ داری. زیادہ سے زیادہ کام اپنی ٹیم کے ممبرس پہ ڈال دیں، ان کو لگے کہ ہمارے بغیر کام چلے گئی نہیں. راتوں کو بیٹھ کر رابطے ہوں، میٹنگ سے بات کی جائے، لوگوں کو احساس دلائیں کہ ہم رات کو بھی جاگتے ہیں، دن کو بھی جاگ رہے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے. تیسری چیز، اعتماد اور حسن ظن. آپس میں بھرپور قسم کا اعتماد ہو، ایسی سچویشن، ایسی حالات پیدا کیے جائیں کہ جس کے بعد لوگ واقعی اپنے کام کو اپنا سمجھیں. اسی میں آپ اگلا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، احساس ملکیت. ان کو یہ نہ لگے ہم امپلائی ہیں، ان کو یہ لگے کہ ہم اونرز ہیں. ہم کام کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا، ہم نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہوگا. چند سال ہوئے جاپان کو آزاد ہوئے، لیکن آج دیکھیے ٹیکنالوجی میں وہ کہاں بڑھ گیا. کبھی آپ ان کے ملک کو دیکھیں کیسا سجا سنورا ہے، کیونکہ وہ ٹیم بن کے جیتے ہیں. اور انشاءاللہ کسی وقت موقع ہوا تو آپ کو وہ ایک جو زلزلہ آیا تھا کچھ مہینے پہلے جاپان میں، اس میں جاپانیوں کا جو بیہیویئر تھا اس پہ بات کروں. ناقص ٹیم وہ ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا بنا کے پیش کرتی ہے. جی ہوا ہی نہیں، وہ کیل نہیں تھا، تصویر تو تھی، ہتھوڑی تو تھی اور آپ تو ہیں، بس کیل نہیں تھا. اس لیے یہ کام پچھلے 8-10 دن سے نہیں ہوا. تو جب لوگوں کو اس میں اپنے کام کا احساس ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ناروے کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ یہاں وہ کینڈیڈیٹ نہیں جیتتا جو لوگوں کو یہ کہہ دے کہ میں ٹیکس کم کروا دوں گا. لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی، آپ کون ہوتے ہیں کم کروانے والے؟ ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا، ہم اس کو مانیں گے. تو جب لوگوں کو یہ فائدہ ہونا، مثال چھوٹی سی دیتی ہوں، اگر جیسے کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی ادارہ کہہ لیں یا کوئی ادارہ، وہ کہتے ہیں اچھا جی جو لیٹ آئیں گے وہ فائن دیں گے، جو چھٹی کریں گے وہ فائن کر دیں گے، جو گھر سے سنیں گے وہ پیسے پے کر کے سنیں گے. آپ کہتے ہیں لو یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا دکانداری کھول رہی ہے. ایک سوچیے، اور دوسرا اگر وہ آپ کا اپنا کام ہو کہیں گے کوئی بات نہیں، میرے اسکول کو ہی جائے گا نا، پھر کیا. ویسے بھی تو بعض دفعہ میں نے دیکھا لوگ ہزاروں کا لاکھوں چندہ دے دیتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کر پاتے. تو جب کوئی چیز ہمیں اپنی لگتی ہے ہم کہتے ہیں یہ میرا ہی ہے، یہ میرا ہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ میرے پیسے. اچھا یہ میرے اسکول کے پیسے، یہ اسکول کہیں ہیں، کوئی بات نہیں. تو جب چیز کو آپ کو اپنی لگتی ہے نا تو ٹیم اچھی جو ہوتی ہے نا اس کو یہ فیل ہونا چاہیے یہ میرا کام ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کو آج کے لیے روکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک امت بنا دے.